शांति। सभी और एक दफा कहो ओम शांति। आज का विषय है कर्मों की गुह्य गति। वास्तव में आप देखेंगे सारे संसार में चार प्रकार के कर्म हैं, और यहां आने के बाद, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद और एक कर्म है। पांच प्रकार के कर्म हर एक मनुष्य व्यक्ति कर सकता है। सारा संसार कहता है मुख्य चार प्रकार के कर्म। एक, मनुष्य आत्मा इस शरीर में जन्म लेते ही कर्म करता है। सवेरे उठते ही कोई न कोई शरीर के द्वारा जो भी कार्य करते उसको कर्म कहते हैं। उसके बाद और एक कहे कि शरीर में आने के बाद किसी को ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कौन, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा समझकर अगर इस शरीर से आप कोई भी कर्म करते हो उसका नाम है अकर्म। न पाप है न पुण्य है, अकर्म कहते हैं। तीसरा और एक कर्म है, इस शरीर में आने के बाद स्वयं की पहचान नहीं है, मैं माना शरीर समझता है। शरीर समझकर जो भी कर्म करते हो उसका नाम है पाप कर्म। शरीर माना पांच उसके गुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो शरीर समझ के जो भी कर्म करते हो आप, इसलिए शास्त्रों में भी कहा, गीता में भी कहा, इस कलयुग में अगर कोई भी कुछ भी कर्म करता है, जैसे कि आग जलाओ तो पहले धुआं आता है। तो इस कलयुग में हर एक मनुष्य को यही ज्ञान है, मैं माना शरीर हूं। शरीर समझ के जो भी कर्म करते हो उसका नाम है पाप कर्म है। लेकिन और एक कर्म है, क्या है कर्म? वो सुकर्म कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं। कि जैसे कि स्कूल खोलते हैं बच्चों के लिए, अन्न दान देते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, एक दूसरों को सहयोग करते हैं, दान करते हैं, ये भी कर्म है। लेकिन इसको कौन सा कर्म कहेंगे? पुण्य का कर्म कहेंगे, सुकर्म कहेंगे। लेकिन जब मनुष्य कर्म करता है किसके प्रति करता है? शरीर को देखकर शरीर के लिए करता है। शरीर एक जन्म के लिए है तो अल्प काल की प्राप्ति होती है, एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है। ये शरीर दूसरे जन्म में काम में आएगा नहीं। इस शरीर के प्रति दान दिया, अन्न दान दिया, स्कूल खोला पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल खोले, ये भी दान है, ये भी श्रेय कर्म है। लेकिन सुकर्म है, पुण्य का काम है। लेकिन इसका फल एक जन्म के लिए है। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहां आने के बाद आपको एक पढ़ाई मिल गई, समझ मिल गया, मैं माना कौन, कौन आत्मा हूं। आत्मा ने इस शरीर में जन्म लिया, कितना भी सुंदर शरीर है तो भी आप शरीर में एक मिनट टिकट आने के बाद रह सकते हो? आप कहो आज नहीं कल आते हैं, चलेगा? नहीं। मैंने इतना खिलाया, इतना पिलाया, पढ़ाया, इतना सोना पहना है, मुझे बहुत कुछ काम करना है, आज नहीं कल आता हूं, चलेगा? नहीं। आप नहीं कह सकते हो मेरा शरीर, हम इस संसार में इस शरीर में मेहमान हैं, टिकट आया कल छोड़ देना है। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक समझ आया। क्या मिली समझ? कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर है। जैसे कार है, कंपनी से कार बन के आया तो ड्राइविंग लाइसेंस दूसरा देता है, तो इस शरीर को चलाने वाला कौन? मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा किसका संतान हूं? मिट्टी में जो चीज बनती है, जो बनती है वो खा करके शरीर बड़ा हो गया, कल मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहां से आया? मैं यहां से नहीं आया, ऊपर से आया। तब कहा, अगर मैं ऊपर से आया, मैं किसका संतान हूं? दुनिया में सब कहते हैं त्वमेव माता श पिता त्वमेव, शरीर के मां बाप तो यहां है, तो हमारे मां बाप कौन है? तब कहते हैं एक खुदा के बंदे हैं, भगवान के बच्चे हैं। भगवान का बच्चा कौन है? शरीर है। भगवान सत चित आनंद स्वरूप है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो निराकार है। उस निराकार परमपिता परमात्मा के संतान मैं आत्मा हूं। अगर ये समझकर कोई भी कर्म करते हो, उस कर्मों का नाम है श्रेष्ठ कर्म। तो अभी आप अपने आप से पूछ लो कि मेरे अंदर किस प्रकार के कर्म भरे हुए हैं। तभी दुनिया में कहते हैं अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल तक भी कुछ पता नहीं चलता है, कोई दर्द नहीं है, तो कैसे कहेंगे आप इनको कैंसर की बीमारी है? साइंस ने साधन बनाया, एक्सरे निकाल के दिखा सकते हो। क्या पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, महात्मा दिखा सकते हो? तो आप अपने आप से पूछो, मैं कौन सी आत्मा हूं? शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी है तो दिखा सकते हैं। कौन सी बीमारी है? क्या आत्मा के अंदर बीमारी वो दिखा सकते हो? हां, दिखा सकते हो। कौन सी आत्मा है ये? जब रात को दिन में होता है, ये माताजी ठीक नहीं, बहुत गुस्सा करती है, ये भाई ठीक नहीं, बहुत परेशान करता है, ये खराब है, ये खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन जब रात को आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न कहां से आते हैं? दिन में ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। रात को जब आंखें बंद करके सोते हो, न सुनते हो न देखते हो, तो स्वप्न कहां से आए? अगर आप कहो, आप में से कोई भी, जो भी इतने बैठे हो यहां, अगर कहो जब रात को सोते हैं पांच विकारों के स्वप्न नहीं आते हैं, उसका नाम है पुण्य आत्मा। इस दूध में पानी है, कैसे कहते हो आप? साइंस ने थर्मामीटर बनाया, मापदंड है, दिखा सकते इसमें इतना पानी है, इतना दूध है। तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा कैसे कहते हो आप? तब एक शब्द याद रखो, न ज्ञान चाहिए, न भगवान चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, न धर्म चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक शब्द याद रखो, जीवन में कभी भी दुख अशांति नहीं है, सदा सुख ही सुख है। कौन सा एक शब्द है वो? कि मैं आत्मा, मैंने इस शरीर में जन्म लिया है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा आप जो भी कर्म करते हो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक शब्द अच्छी तरह से याद रखो, न कोई धर्म चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न भगवान चाहिए, न डॉक्टर चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। ये एक शब्द भूल जाते हैं तब ये सब चाहिए। क्या शब्द है वो? कि मैं आत्मा, इस शरीर में मैंने जन्म लिया है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा आप कोई भी कर्म करो, कुछ भी करो, हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तब दुनिया में गीत गाते मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देता है, कौन सा मुखड़ा देखेंगे? जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो तो सपनों में कौन से स्वप्न आते हैं? अगर आप में से कोई कहो कि जब भी मैं सोता हूं तो पांच विकारों के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पांच विकारों के स्वप्न नहीं आते हैं, उसका नाम है पुण्य आत्मा है। अगर इस सभा में कोई भी है तो हाथ उठाओ। डॉक्टर के पास अगर जाते हो, डॉक्टर ऐसे दवाई देता है क्या? पहले दिखाता है, बताता है आपको ये बीमारी है, बता करके दवाई देता है। आप पूछेंगे ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको क्यों चाहिए, भगवान क्यों चाहिए? डॉक्टर सभी के लिए नहीं है। जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो। आत्मा के अंदर बीमारी आई, आत्मा ने स्वयं को भूलकर शरीर समझकर कर्म करने लगे तो पाप कर्म होने लगे। और एक शब्द याद रखो कि जो भी मैंने कर्म किया उस कर्मों का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन के तहत। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। हर कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। और उसकी निशानी है बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा काला गोरा गरीब श्रीमंत कौन कर रहा है? भगवान जो सुख दाता है वो ऐसा बच्चों को जन्म देगा? तो मेरे जीवन में जन्मते ही डायबिटीज की बीमारी, जन्मते ही बीमारी कहां से आई? कुछ किया ही नहीं है। कुछ कर्म किया तो सजा मिलेंगे ना। बच्चे ने कुछ कर्म ही नहीं किया, जन्मते ही लंगड़ा अंधा कौन कर रहा है? अच्छी तरह से जानना चाहिए ये मेरे कर्मों का फल है। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है। हर एक को इस संसार में जीने का अधिकार है। कैसा जीना है? सुख संपन्न जीवन बिताने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता सृष्टि की रचयिता ने दिया हुआ है। फिर भी आज हमारे जीवन में यह बीमारी क्यों आई, ये दुख क्यों आया? कारण हमारे कर्मों का फल है। तब आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो आप देख लो मेरे अंदर कौन से कर्म भरे हुए हैं। किसी ने भरा? औरों ने भरा? नहीं, मैंने किए हुए कर्म है। इसको पहले मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, अपना मुखड़ा देख लो मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। हां, कोई हर्जा नहीं। शास्त्रों में कहा, देख लो अगर आपने महाभारत पढ़ा हो, महाभारत में एक दृष्टांत आता है कर्मों की गति पर, एक ही दृष्टांत बस। क्या कहा भीष्म पितामह को? अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे, सामने श्री कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, आज मुझे दुख क्यों मिल रहा है? मैंने किसी को दुख नहीं दिया है, मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली, तीर की शैया पर क्यों? तो श्री कृष्ण खड़े थे, उन्होंने कहा बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे एक सांप आया, लेकिन आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तुरंत रथ को रोका, तीर उठाया, सांप को बचाया, सांप को बाजू में किया। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, उनका लक्ष्य एक ही था, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सांप को उठा के बाजू में फेंका, कहां गिरा वो? कांटे के झाड़ पर गिरा। जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। इसलिए दृष्टांत दिया, एक शब्द याद रखो, रास्ते पर चलते हम, गरीब है, लंगड़ा है, अंधा है, आपने उठाके उसको 10 रुपया दे दिया तो आपने तो दान किया ना, चलेगा? आपने तो दान किया, गरीब है, दान किया आपने, उसने जाके तंबाकू खाया, शराब पिया, दान करते समय एक शब्द आप भूल गए, पात्र को देख के दान करना चाहिए। हमने दान करना समझ लिया, आधा सुना, दान भी किसको करना चाहिए? पात्र को देख के दान करना चाहिए, नहीं तो दान का भी फल अगर अच्छे पात्र को किया तो अच्छा फल मिलेगा, गलत पात्र को दान किया कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो दान करते समय भी, बोलते समय भी, कर्म करते समय भी सोच समझ के कर्म करो। मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। देखो और भी गीता में भी कहा, साधु है उसको भी भूख लगती है, मनुष्य को भी भूख लगती है। मनुष्य को भूख लगती, खाना बनाना है तो लकड़ी चाहिए, जंगल में जाता, जंगल काटता जाता है, कभी सोचता नहीं है मुझे खाना बनाना है, अपना सुख देखता है। जंगल काटते जाओ तो वर्षा कैसी होगी? लेकिन साधु को भी भूख लगती है, उसको भी लकड़ी चाहिए। जब जंगल काटता है, झाड़ काटता है, तो सोचता है, समझ है, ज्ञानी वो, उसको समझ है, समझ करके जो कर्म करता है इस कर्मों का फल क्या है। तब कहा ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं है, सत्संग से सदगति होती है। फिर आप पूछेंगे सत्संग किसको कहेंगे? कहीं भी जाओ, जहां भी ज्ञान सुनाते हैं वहां जाओ, उसको सत्संग कहेंगे? बताओ, कहीं भी जाओ, भारत में सभी धर्म, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, सब जगह ज्ञान है, तो उसको आप कहेंगे सत्संग? हां, उधर भी एक मापदंड चाहिए, सत्संग किसको कहे? हर चीज का मापदंड है। हां, आप कहीं भी सत्संग में जाओ, काले शरीर को गोरा शरीर कर सकते हो? नहीं। सत्संग में क्यों जा रहे हम? आत्मा की दुर्गति से सदगति करने चाहिए। दुर्गति माना पाप आत्मा, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने के लिए जाए, काले शरीर को गोरा शरीर करने नहीं जाते हैं। सत्संग में जाने से शरीर परिवर्तन नहीं होता है, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए, बनाने के लिए जाते हो, तब उसका नाम है सत्संग से सदगति होती है। आप कोई भी सत्संग में जाओ, देखना वहां जाते ही ये तीन प्रकार की सत्यता अगर आपको कहीं भी मिलती है, उसका नाम है सत्संग, उससे सदगति होती है, पाप मिटता है। पहला सत्य, तीन प्रकार का सत्य चाहिए। एक सत्य है, कौन सा है वो? आत्मा सत्य है, शरीर आज है कल नहीं है। तो कहीं भी सत्संग में जाते हो तो वहां कहते हैं आत्मा समझ के बैठो, उसका नाम है सत्संग। दूसरा है, वहां जाने के बाद किससे ध्यान लगाते हो? एक सत्य, कौन है वो? सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, जो एक निराकार डॉक्टर भूत है। हार्ट का डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला अलग है, कैंसर बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर अलग है। लक्ष्मी की पूजा करो धन मिलेगा, सरस्वती की पूजा करो विद्या मिलेगी, लेकिन एक ईश्वर है वो, कौन? पतित आत्मा को पावन करता है, उसका नाम है पाप कटेश्वर है वो, और उसका नाम शिव है, शिव भगवान, उस ईश्वर का नाम है। कौन है वो? पाप मिटाने वाला है। तो हमको कौन सा भगवान चाहिए? सोना देने वाला चाहिए, पाप मिटाने वाला चाहिए? कौन सा डॉक्टर चाहिए? बीमारी मिटाने वाला डॉक्टर चाहिए। अगर कहीं भी सत्संग में जाते हो, वहां कहते बैठकर एक निराकार जो सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके तरफ ध्यान लगाते हो, क्योंकि उसने कहा मैं पतित आत्मा को पाप पावन बनाता हूं, मैं पाप कटेश्वर हूं, तब कहेंगे ये सत्संग है। वहां जाकर के किसकी वाणी सुनते हो? एक ज्ञान का सागर एक ही है, जो निराकार परमपिता परमात्मा, वो ज्ञान का सागर है, अनंत है। वो स्वयं आकर के पतित आत्मा को पावन बनाने की शिक्षा देता है। तो वो जहां मिलता है आपको, ये तीनों प्रकार की सत्यता आपको कहीं भी मिले, उसका नाम है सत्संग। उससे सतगति होती है, उससे जो पाप कर रहे हैं हम, तो पाप से हम बच जाते हैं, और जो पहले पाप किया हुआ है उस पाप को आप मिटा सकते हो। तब कहते हैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जा रहे हो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कौन? वो कहता है आज के बाद चीनी नहीं खाना, शुगर की बीमारी है, और ये दवाई लेते जाओ तो जो शुगर की बीमारी हो, बीमारी भी ठीक होती जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, दवाई भी खाएंगे और चीनी भी खाएंगे, चीनी छोड़ नहीं सकते हैं, तो बीमारी शुगर की बीमारी जाएंगी। तो डॉक्टर के पास जाते वो दवा और पथ्य भी बताता, ये पथ्य करना चाहिए। यहां भी ये दोनों बात याद रखना, जहां भी तीन प्रकार की सत्यता मिलती है उसका नाम है सत्संग। अगर वो करने से सदगति, आत्मा की सदगति होती है। जैसे देख लो आप इधर बैठे हो, आप में से देख लो, आप अपने आप में जितने भी भगवान के बच्चे, कोई भी रावण का बच्चा नहीं है इधर, सभी क्या कहते हो, कोई भी रावण का बच्चा है नहीं, भगवान के बच्चे हैं, खुदा के बंदे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहते हो। लेकिन आप में से कोई भी एक भी बताओ, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है तो हाथ उठाओ। आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया है, माता जी सोच के बताओ, देख के बताओ, आपके ऊपर किसी ने गुस्सा किया? आपने नहीं किया, एक दिन में नहीं किया? हाँ एक दिन किया था, देख लो। हाँ तो ठोक के देखना पड़ेगा ना, मार्केट में जाओ, आम बेचने वाला कहता है ये आम बहुत मीठा है, लेकिन ऐसे आम तो लेके नहीं आएंगे ना, चक्के देखेंगे, ये आम मीठा है तो पूरा ले लेंगे। तो भगवान भी ऐसा नहीं, बहुत सोच समझदार है, चतुर सुजान कहा उसको, तो वो भी देखता है मेरे बच्चे कौन। तो उसको कहा कि वो पुण्यवान भगवान के बच्चे कहते हो, ये पांच विकार भगवान के बच्चों के नहीं, शरीर के हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये ज्ञान मिला कि अपने को आत्मा समझकर, भगवान की श्रीमत है कि बच्चे दान करो। अब इसके लिए उसको आप एक उदाहरण बताता हूं कि दान किसको करना चाहिए, वह आप जवाब दे देना। अभी देख लो, सहज बताता हूं, साधारण रूप से समझ में आना चाहिए, पुण्य का काम किसको कहते हैं। अभी देखो माताजी के घर के बाजू में बहुत अच्छा एक मंदिर बन रहा है, और उसमें रोज 10,000 भाई बहने आएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, 10,000 आएंगे रोज। तो माताजी को लगा अरे इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, कुछ दान करना चाहिए, 10,000 लोगों को फायदा मिलेगा। तो माताजी ने 10,00,000 रुपया दान देने के संकल्प किया, और माताजी के घर के बाजू में ही एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुल रहा है। उसमें देखती है माताजी, दो तीन माताएं आती है, दो चार भाई आते हैं। माताजी को लगा कि यहां दान करेंगे तो क्या फायदा है, थोड़े से आते, चलो 100 रुपया दान करो, चलेगा? पहले आपको दान कहां करना बता दिया, अभी आप जवाब दे दो कि दान कहां करना चाहिए। आपके घर के बाजू में ही बहुत बड़ा एक मंदिर बन रहा है, और रोज 10,000 भाई बहने भगवान के बच्चे दर्शन करने आएंगे मंदिर में, और आपके घर के बाजू में ही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय छोटा सा आश्रम खुल रहा है, आपको पता चला, और उधर दो चार माताएं आती है, दो चार भाई बहने आते हैं, तो कहां दान करना चाहिए? माता जी बताओ, अगर आपको एक बैंक वाला कहता है मैं आपको एक साल में 10% इंटरेस्ट देता हूं, एक बैंक वाला कहता है 1% इंटरेस्ट देता हूं, कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई जी बताओ? 10% जहां मिलेंगे उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जो 1% देता है वहां इन्वेस्ट करेंगे नहीं, ये मनुष्य की समझ है। लेकिन यहां भी सोच लो आप, तो कहां करना चाहिए भाई बताओ? सर वीर जी बताओ, आश्रम में करें वहां तो दो चार लोग आएंगे, 1% इंटरेस्ट मिलेगा, यहां तो 10% इंटरेस्ट देगा। हां वीर जी खड़े होके बताओ, सभी को सुनाई देगा ना, भाई जी आश्रम में कैसे देंगे, वहां तो 1% इंटरेस्ट मिलेगा, वहां तो 10,000 लोग आएंगे ना दर्शन करने, आपका धन का 10,000 लोगों को फायदा मिलेगा, तो आपको भी मिलेगा ना उसका रिटर्न। भाई जी कुछ कहता, माता जी सही बताएंगे, माता जी आप जवाब दे दो, हाँ पीछे वाले माता जी जवाब दे दो, कौन माता है जवाब देते हैं, हाँ माता जी आप जवाब दे दो, मंदिर में देना चाहिए ना, 10,000 लोग आएंगे वहां, वहां भी तो ज्ञान है ना, मत दर्शन करने जाते हो, हाँ माता जी सही बता रहे, वीर जी ने सही जवाब दिया। देख लो, सोचना चाहिए, अच्छी तरह समझ आना चाहिए, कर्मों की गति बहुत गुई है, समझ में नहीं आता है। आपको दो उदाहरण देता हूं, देख लो 10,000 दर्शन करने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, नारियल केला रखेंगे, बाहर आने के बाद लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, तंबाकू भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे, उन्होंने मंदिर में जाकर क्या प्राप्ति किया? कुछ प्राप्ति किया? अपनी कुछ बुराई छोड़ी? कोई परिवर्तन? अगर उस खेती में आपने बीज बोया, कुछ उगा, खेती है वो, उसमें एक बीज बोया आपने लेकिन कुछ उगा ही नहीं, आपको क्या मिलेगा? हां इस खेती में आपने एक ही बीज बोया लेकिन 5-10 दाना ही लगे, लेकिन भाई जी रोज आश्रम में जाता है, ज्ञान सुनता है, ध्यान करता है, बहुत गुस्सा करते थे, अगर एक महीने के अंदर 5-10% गुस्सा करना छोड़ दिया, समझ में आया, ध्यान लगाते हैं, शक्ति कमाते हैं, उसमें 1% तो आपको मिलेगा ना, कमाई कहां हो रही है? 10% वाला बैंक वाला कल दिवाली निकाल के चला गया, सब कुछ खत्म। तो दान करते समय भी सबका सोच समझ के करो। हां कोई भी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, अगर अपना क्रोध छोड़ के आता, आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं बुरे कर्म नहीं करूंगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, अपनी बुराइयों का त्याग करता है। मंदिर में क्यों जा रहे हो? मैंने एक भाई को देखा, पंजाब का एक भाई, सही बात बताता हूं, कहानी नहीं, तो रोज आश्रम में आता था थोड़ा दिन, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। एक मंदिर हमको बहन जी दिखाने लेके गई, बहुत ग्लास से, ये ग्लास होता ना उससे बना हुआ था, तो वहां देखने के लिए गए, तो वो भाई वहां था, तो बहन जी ने पूछा, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के जो टीचर बहन ने पूछा, भाई जी आजकल आप आश्रम में आते नहीं हो? तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा बहन जी ये जो मूर्ति है ना, ये देवी है ना, कभी भी गुस्सा नहीं करती, कभी कुछ पूछती नहीं है, चोरी करके आओ, शराब पी के आओ, तंबाकू खा के आओ, लेकिन ये मूर्ति कभी कुछ बोलती नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन वहां आश्रम में एक बहन जी है, वो मूर्ति है ना कुछ बोलती है, पूछती है, गुस्सा करके आए हो, शराब करके आए हो, वो मूर्ति है ना बोलती है, इसलिए डर लगता है। तो कहां जाना चाहिए? सही, अभी अभी एक मेरे ख्याल एक साल भी नहीं हुआ, तो बहन जी ने उनसे पूछा, आप आश्रम में आते नहीं हो? बहन जी सच्ची तो बात बताऊं, ये मूर्ति कुछ नहीं बोलती है, शराब पी के भी आओ, तंबाकू खा के आओ, किसी को लूट के आओ, किसी को मार के आओ, कुछ नहीं बोलती है, बहुत अच्छी है। और वो जो मूर्ति है वो पूछती है रोज, इसलिए डर लगता है, इसलिए मैं आता नहीं हूं। तो आज हमारी गति ये हो गई है, इसलिए कर्मों की गुह्य गति। आप पूछेंगे संसार में दुख क्यों है? भारत स्वर्ग था, भारत देवभूमि थी, भारत नरक नहीं था। किसने बनाया ये? कर्मों की गति। हमें ज्ञान नहीं मिला तब कहा, शास्त्रों में कहा, गीता में कहा, जब जब इस धरती पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बहुत होता है, भगवान के बच्चों को दुख मिलता है, तब स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आता है साधारण रूप लेकर और मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देता है कि अपने को आत्मा समझ, मेरे श्रीमत के अनुसार अगर कोई भी कर्म करते हो उस कर्मों का नाम है श्रेष्ठ कर्म। वो आपको वर्तमान भी सुख देगा और भविष्य में भी आपका प्रारब्ध बनाएगा। अगर आपने रामायण सुना हो, रामायण में देखो सीता कोई साधारण नारी तो नहीं थी ना, सीता कोई साधारण नारी थी, श्री राम की धर्मपत्नी थी, दशरथ कंसा जनक राजा की बेटी थी, साधारण नहीं है। उनको लक्ष्मण ने कहा कि इस रेखा को क्रॉस करके बाहर जाना नहीं, लक्ष्मण ने उनको लक्ष्य दिया इससे बाहर जाना नहीं। साधु आया घर के सामने, और भारत की सभ्यता है घर के दरवाजे पर कोई भी आया खाली हाथ नहीं भेजना है। एक साधु आया, उसने कहा मुझे दान दे दो। सीता ने सोचा कि मैं दे दूं, उन्होंने कहा नहीं इससे बाहर आके दे दो। सीता मैया को लगा अरे साधु को अगर मैं अपनी मर्यादा छोड़कर बाहर नहीं जाऊं तो श्राप देगा, डर करके अपनी मर्यादा छोड़कर बाहर पांव उठाया। क्या हुआ, कौन थी वो? सीता को पता नहीं चले कौन है, साधारण नारी तो नहीं थी। हां तब का पात्र को देखो सामने कौन है, ये देखकर दान दे दो। अगर अपनी मर्यादा छोड़कर पांव उठाया, रावण लेके गया। तो मनुष्य आत्माओं को इस संसार में आने के बाद मर्यादा है, समझ है, समझ है कि दान करना जरूर चाहिए, मर्यादा डाली है, समझ दिया है। सामने वाले व्यक्ति को देख लो। अभी आप पूछेंगे भाई जी हम कैसे परखे ये कौन व्यक्ति है? हां वो भी कौन परख सकता है? जैसे देख लो सोनार होता है, उस सोनार को पता है इस सोने में कितना लोहा मिक्स किया है, वही जानता है। तो यहां भी जिसने अच्छी तरह से ज्ञान को समझा, मैं आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान भगवान का संतान हूं, ये समझ कर अगर आप किसी को देखते हो, देखना वो व्यक्ति कभी भी आंखें नीचे नहीं करेगा, कभी भी इधर उधर नहीं देगा, आपसे अच्छी तरह से दृष्टि लेगा। तब कहें अगर दाल में कुछ काला है, अंदर कुछ कालापन है, वो आपसे दृष्टि नहीं लेगा, तुरंत नीचे दृष्टि करेगा क्योंकि अंदर कुछ कालापन है। तब कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा समझकर, सर्वशक्तिवान भगवान का बच्चा समझकर अगर औरों को देख लो, आपको स्पष्ट पता चलेगा ये कौन सा व्यक्ति है। अगर शरीर समझ के देखते हो, काला गोरा धनवान मित्र दुश्मन वो दिखाई देगा। तो आत्मिक दृष्टि चाहिए, रूहानियत चाहिए। तो पहले पाठ यहां है, अगर आज भी कलयुग की दुनिया में आप पुण्य का काम कर सकते हो, सिर्फ एक पाठ पक्का करके जाओ यहां से कि मैं कौन, सर्वशक्तिवान बाप है, शिव बाबा है वो, भगवान का मैं बच्चा हूं, कहां है कौन है वो, चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं, ये समझकर अगर किसी पर नजर रख देते हो आपको पता चलता, तुरंत पता चलेगा। अगर आज भी दुनिया में देखो किसी के बाजू में बैठो आप, शरीर में स्नान एक पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो बदबू आती है, शरीर स्वच्छ नहीं है। कभी कभी आपको भी लगता है इनके बाजू में बैठे गलत विचार आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कि मनुष्य के विचार में गलत विचार चलते हैं, उसके वाइब्रेशंस फैलता है। अगर फैन के बाजू में बैठो ठंडी हवा आती है, फैन नहीं है, फैन है चल नहीं रहा है, ठंडी हवा आएंगी नहीं। तो जिसके मन में विचार चलता है, गलत विचार चलते हैं, देखते हैं उसके बाजू में आते ही आपको पता चल जाता है ये व्यक्ति ठीक नहीं है। लेकिन वो परखने की शक्ति, अगर अपने आप को आत्मा समझते हो, आत्मा के पास ये शक्तियां हैं, सिर्फ आत्मा समझ के चलो, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अगर श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो, सबसे पहले पुण्य कर्म करना चाहते हो, और मेरे से सवेरे से रात तक इस शरीर के द्वारा कोई भी पाप नहीं होना चाहिए, तो एक ही पहले शब्द याद रखो कि अपने आप को जानो, मैं कौन, सर्वशक्तिवान शुभ भगवान, शुभ आपका बच्चा हूं। एक दूसरा और एक तरीका बताता हूं कि भाई जी पुण्य काम कैसे करूं, मैं श्रेष्ठ कर्म कैसे करूं, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन राजयोग है, सबसे सहज है, कोई मेहनत नहीं है, और आज ही करके देख लो, आज सुन लो कल सवेरे करो, देखो अभी आज आप रात को सोएंगे तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, देखना आप, और कल सवेरे उठते ही खटिया पर बैठते ही एक गोली खाना, और कल रात को आप सोएंगे देखना एक भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आएंगे, कब उठे सोए कब उठे पता ही नहीं चलेगा। अब एक गोली खाना चाहते हो कि सुनना चाहते हो, जो समझते हैं भाई जी वो गोली दे दो हमको चाहिए, हाँ तो वो हाथ उठाओ, उनको देना पड़ेगा ना, बाकी को देने की जरूरत नहीं, जो समझते हमको गोली चाहिए वो हाथ उठाओ, सभी को नहीं चाहिए, अरे वीर जी को नहीं चाहिए, वीर जी कहते नहीं चाहिए, वीर जी नहीं चाहिए तो हाथ उठाए नहीं, हाँ देरी से उठा रहे हो तो चाहिए ना, तो आप पूछेंगे डॉक्टर भी देखो दवाई ऐसे नहीं देता है, ऐसे देता है हाँ सिर दर्द हो तो दवाई ले लो, अगर मेरे अंदर कुछ पाप है, हाँ जरूरत नहीं है सिर दर्द है सहन करो, डॉक्टर बुलाने आता है, अगर आपको सिर दर्द है डॉक्टर बुलाने आता है नहीं, आप सहन नहीं कर सकते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, भगवान भी आपको नहीं कहता मुझे याद करो, जरूरत नहीं, बच्चे किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक बीमारी आ गई, अचानक परिवार में कोई ना कोई दुख है, क्यों हो रहा है ये, मैंने किए हुए कर्म है, किसी न किसी रूप से भोगना ही पड़ेगा, और उसका पूप आप कहेंगे मैंने पाप किया कैसे पता चला, स्वप्न बताते हैं। दूसरा मन में गलत विचार आते हैं, मन में गलत विचार कहां से आए, आप कहेंगे हमारे टेप रिकॉर्डर में अच्छे गीत बजना चाहिए, जो अंदर भरा वही गीत बजेगा, आप जो चाहते वो नहीं होगा, आप कहते हो मेरे मन में गलत विचार क्यों आ रहे हैं, मन चंचल नहीं मन खराब नहीं, ये अंदर ऐसे कर्म भरे हुए हैं, पहले स्वप्न बताता है फिर मन विचार बताता है फिर कर्म बताता है, तब आपको कहा अपना मुखड़ा देख लो, ये कौन सा है, ये सभा कौन सी है, रूहानी हॉस्पिटल है ये, एक जिस्मानी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, सब्जी कपड़ा परचेज करने हॉस्पिटल में जाते हो, डॉक्टर का दर्शन करने जाते हो नहीं, बीमारी को मिटाने जाते हो, ये रूहानी हॉस्पिटल है, आत्मा की बीमारी मिटाने के लिए यहां आए हो, तो पता होना चाहिए मेरे आत्मा के अंदर मेरे अंदर कौन सा बीमारी है, अच्छी तरह से देख लो, और उस बीमारी मिटाने की सहज दवाई है, जब आप सबने हाथ उठाया, और वो कल सवेरे उठते आज सुनना, कल सवेरे उठते ही खटिया पर बैठते ही अपने आप को एक पाठ पढ़ाओ, कौन सा है वो, कि कल सवेरे से रात तक एक काम करना है, कर सकते हो कि कठिन है, कर सकते हो, सिंपल है, कुछ नहीं, खाना खाते रहो, बात करते रहो, चलते रहो, सिर्फ एक काम करना है कि कल सवेरे से रात तक आपके आंखों के सामने कोई भी व्यक्ति आया, छोटा बच्चा आया, मित्र आया, दुश्मन आया, जिसने आपको बहुत दुख दिया था वो भी आएगा, जिसने आपको बहुत सुख दिया वो भी आएगा, सवेरे से रात तक आपके आंखों के सामने कोई भी आया उसको खाली हाथ छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो क्या दान करेंगे? ज्ञान अगर आप सुनाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी भाषा कौन सी भाषा में बोल रहे हो, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। अगर आप पंजाबी में बोलेंगे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहते हैं बहन जी क्या बोल रही है, नहीं और क्या दान देंगे आप, किसी के पास है शुभ भावना? नहीं, अगर आपको किसी ने बहुत दुख दिया, परेशान किया, अगर वो सामने आएगा आपके मन से शुभ भावना निकलेंगी? नहीं, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत परेशान किया विचार आएगा, तो शुभ भावना भी हमारे पास नहीं है। आप पूछेंगे भाई जी आप क्या देंगे, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ भी खाली, जेब भी खाली, लेकिन मेरे पास एक चीज है, कौन सी है वो, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। पिताजी के जेब में हाथ डाल सकते हो, भाई के जेब में हाथ नहीं डाल सकते हो, वो कहेगा मेरा है, लेकिन पिताजी के जेब में हाथ डाल के दान कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना। तो रास्ते पर चलो, आपके आंखों के सामने कोई भी आया, किसी को देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, शुभ बाबा इसका कल्याण करो, शुभ बाबा इनको सद्बुद्धि दे दो। जैसे भक्ति में देख लो, रास्ते पर चलते हैं राम 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 करते जाते, क्यों? मुख से कोई गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन जीत जगत जीत कहा, सारी बीमारियों का, सारी दुखों का कारण मन है। किसी को देखते ही मन में गलत विचार आया, उनको पता भी नहीं है, लेकिन मेरा मन तो मैला हो गया ना, मैला मन लेकर के आप शांति से सो सकते हो, नींद आएंगी? नहीं, मन स्वच्छ चाहिए। अगर मन आपका स्वच्छ है, जाते ही गहरी नींद आ जाती है। आपको पता होना चाहिए आज की दुनिया में 80% जो हार्ट की बीमारी हो रही है वो गैस के कारण हो रही है। खाना खाते हैं नींद नहीं आती है, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, गैस होता है। इसलिए मनुष्य को नींद चाहिए। जब अच्छी तरह से नींद आती है, जो खाना खाते हो तो हजम होता है। तो बीमारी का कारण क्या है? खाना तो खा रहे, हम नींद कहां से लाएंगे? डनलॉप की गद्दी पर सोते हो लेकिन नींद ले आ सकते हो? मार्केट में मिलती है। और किसी को गुस्सा करो, किसी को लूटो, किसी को दुख दे दो और शांति से जाके सो सकते हो? बताओ कोई सो सकता है? नींद नहीं आ सकती है। तब कहा मन को जीत लो पहले। तो मन को कैसे जीते? मन जीत जगत जीत। तो मन को कैसे जीते? सारी बीमारियों का कारण मन है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर 1 राजयोग है। सिर्फ एक ही दिन करो, दो दिन भी नहीं चाहिए। कल रात को आप सोएंगे, मुझे बताना, मैं इधर ही हूं। कभी कभी डॉक्टर दवाई देता है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगी, आपने एक गोली खाई कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे? डॉक्टर ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो मैं यहां हूं, कल परसों मुझे आके बताना, भाई जी आपने गोली दिया कुछ काम नहीं किया, है ना। दवाई जेब में रख करके आपको बीमारी ठीक होना चाहिए? नहीं, दवाई लेनी पड़ेगी ना। और बहुत भी, एक महीने के नहीं कहा, सिर्फ एक दिन, कल सवेरे से रात तक किसी से घर में, परिवार में किसी से बात करना है आज करो। कल सवेरे उठते ही बात जरूर करनी है, लेकिन मुख से बात नहीं करनी है, हो सकता है। कल सवेरे से रात तक दुनिया में भी भक्ति में भी व्रत रखते हैं, तो मौन व्रत रखो एक दिन सिर्फ। कल सवेरे से रात तक औरों से बात जरूर करनी है, लेकिन मुख से नहीं करनी है, मन से करना है। किसी को देखते ही शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शांति की शक्ति दे दो। शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, और वो भी एक घंटे में एक व्यक्ति को दे दो। वन ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, सिर्फ एक बूंद, एक एक बूंद इकट्ठा करते जाओ, एक एक घंटे में शाम तक ग्लास भर जाएगा। रात को कल सोएंगे आप, देखना एक भी पांच विकारों के सपने आएंगे। चमत्कार नहीं है, जादू नहीं है, ये हमारा मन दो काम करता है। किसी को देखते आप गलत भी विचार कर सकते हो, किसी को देखते आप अच्छे भी विचार कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। लेकिन अपने मन को आपको पढ़ाना, अगर आपको देखते ही मेरे मन में क्या विचार है आपको पता है? नहीं, मुझे पता है। तो मेरे मन में मुझे सिखाना पड़ेगा, मेरा मन है ये, मुझे सिखाना पड़ेगा मेरे मन को, और कोई नहीं सिखा सकता है। तो आप एक पाठ पढ़ाओ कि कल एक दिन सवेरे से रात तक किसी को देखते ही किसी को खाली हाथ छोड़ना नहीं, देखते ही शुभ बाबा, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं, पिताजी के जेब में हाथ डाल दो। हमारा पिताजी कौन है? वो सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के संतान है, भगवान के बच्चे। तो उनसे ले करके दान करो, कंजूसी क्यों करते हो? अगर अपने जेब से कुछ जाता है तो सोचना पड़ता है ना? पिताजी के जेब में हाथ डाल के दान करने में कुछ सोचना चाहिए? पिताजी कौन है? अनंत है, सर्वशक्तिवान है वो, उसका भंडारा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, है ना? उससे लेकर के दान करो, इतना सहज नंबर वन, और एक ही दिन करो, तब आपको आत्मविश्वास होगा। हाँ, अरे आज गहरी नींद आ गई, कब सोए कब उठे पता ही नहीं चला, तब आपको विश्वास होगा कि ये डॉक्टर भी ठीक है, ये गोली भी ठीक है, ये रोज खानी चाहिए। अगर आपने गोली लिया खाया नहीं, गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आई, तो दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, ये डॉक्टर काम करने, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, है ना? दुनिया में, भारत विश्व में बहुत डॉक्टर्स है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। तो यहां भी अगर हम एक ईश्वर के संतान कहते हो तो उसका श्रीमत है, वो कहता है बच्चे मेरे से लेके दान करो, क्यों गरीब हो गए, कुछ भी नहीं है। औरों के प्रति शुभ सोचो, आप रामायण ले लो, महाभारत ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, कहीं भी कहा किसी को गुरुवाणी ले लो, किसी को कभी कहा औरों के प्रति गलत सोचो, कहा है किसी ने? कहा तो बताओ। हाँ, ये भी कहा, भाई जी मैं गलत नहीं सोचता हूं, लेकिन भाई जी बहुत गुस्सा करता है, बहुत परेशान करता है। इसका भी व्यवस्था गीता में सुनाया, क्या को अधम ते अधम महापापी है, और एक पत्थर मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? हां, धर्म का मूल है दया करो, क्षमा करो, समझाओ बेटा ऐसा नहीं करो। अगर देखो दो बच्चे इधर हॉल में आवाज करते हैं, लेकिन आप उनको बच्चे चुप रहो नहीं मानते, क्या करेंगे आप? मारेंगे उनको? नहीं, माताजी को कहेंगे ना, माताजी आप अपने बच्चों को संभालो। तो अगर हमको कोई दुख देता है, परेशान करता है, हमारा कहना नहीं मानता, बच्चे टीवी देखते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, माताजी गुस्सा कर रही है, उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। आज से थोड़े समय पहले मैं बाहर गया था विदेश, तो ऐसे ज्ञान क्लास करा था। तो आजकल बुजुर्ग परिवार वाले मां बाप क्या कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे मां बाप की सेवा नहीं करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मां बाप बुजुर्ग हो गए वृद्धाश्रम में रखते हैं, बच्चे बिगड़ गए, इतना ही बोला मैंने। इतना बोलते एक माताजी रोने लग गई, मुझे लगा शायद माताजी बीमार होंगी। हमने दूसरी माताजी को कहा, माताजी वो देखो माताजी रो रही है, बीमार है, आप देख लो। वो उठ के खड़ी हो गई, भाई जी मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन आज मुझे समझ में आया, आज तक मैं समझ रही थी मेरे दो बच्चे हैं, शादी करके दिए, लेकिन एक दिन भी मेरे पास नहीं आते, मेरी शक्ल भी नहीं देखते हैं। मैं सोच रही थी कि बच्चे बिगड़ गए, लेकिन आज आपने एक शब्द बोला कि बच्चों को किसने बिगाड़ा, तो आज समझ में आया। बच्चे छोटे थे, स्कूल में जाते नहीं थे, उठते नहीं थे, मैं बहुत मारती थी, बहुत गुस्सा करती थी, मार करके गुस्सा करके बच्चों को स्कूल में छोड़ती थी। आज समझ में आया, बच्चों को याद है मेरी मम्मी क्या करती थी। ऐसी मम्मी का दर्शन करने आएंगे? तो भाई जी मैं क्या करूं, माफी मांग लो बच्चों से जाकर। माता जी माफी मांगने से नहीं जाएगा, आपको पता है उनका जन्म तिथि, बर्थडे पता है, केक बना के ले जाओ, खाना बना के ले जाओ, आप उनके पास जाओ बार बार तो देखते रहेंगे हमारी मम्मी तो सुधर गई, अभी कुछ बोलती नहीं है। तो हमें कर्म करके सिखाना पड़ेगा। कर्म करते समय हम भूल जाते हैं, कर्मों का फल जब आता है तब रोना आता है ना। तो इसलिए कर्म करते समय सोच लो, बीज बोते समय सोच लो, ये बीज फल खट्टा निकला किसने बोया था, हमने कर्मों का ऐसे बीज बोना चाहिए। फिर भी यहां व्यवस्था दिया है, फिर भी भगवान का वो पतित आत्मा को पावन करने आता है और सबसे सहज विधि दिया, आज से शुरू करो, कल जाते समय एक छोड़ के जाओ। कभी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, बुराई छोड़ के आते हैं, है ना, किले के आते हैं, तो ये बहुत बड़ा तीर्थ है। तो यहां आए हो, जाते समय क्रोध छोड़ के जाओ, बाकी चार विकार भगवान अपने आप लेता है। भगवान ने कहा हिम्मत का एक कदम रखो, बाकी चार कदम मैं ले लूंगा। क्यों कहा, गुस्सा करना न करना हमारे हाथ में है। अगर भाई जी बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, तो मेरे अंदर आग लगती है, मुझको दर्द होता है, खून निकलता है, कुछ नहीं होता है, बोलने दो। हाथी रास्ते पर जा रहा है, कुत्ता कितना भी भोंकता है वो अपने आप शांति से चला जाता है। हाँ, परिवार में बच्चे पति बहुत गुस्सा करते हैं, कौन, आप चुप रहो, लेकिन मन में एक संकल्प करो, भगवान ये आपका बच्चा है, आपने इसको शांत करना है, मैं नहीं कर सकती हूं, ये मेरा पति नहीं आपका है, ये मेरा बच्चा नहीं आपका है। उस समय भगवान को याद करो। अगर आपने सुना हो महाभारत पढ़ाओ, लास्ट एक महाभारत का दृष्टांत देता हूं, आप जवाब देना। देखो महाभारत के अंदर सभा में सारे भीष्म पितामह सारे परिवार वाले बैठे हैं, परिवार वालों के बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है दुशासन। परिवार वालों में किसी ने उठ करके दुशासन को रोका, भीष्म पितामह थे, सारे परिवार वाले बैठे हैं, और सारे परिवार वालों में एक ने भी उठकर द्रौपदी का मदद किया, दुशासन को रोका, किसी ने नहीं रोका। चलो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, श्री कृष्ण आया, द्रौपदी को मदद किया, वस्त्र दिया, लेकिन दुशासन को रोका, दुशासन को रोका नहीं, रोका। लेकिन हम क्या चाहते, माताजी गुस्सा करते आप चुप रहो, पति को बोलते आप चुप रहो, नहीं, मुझे चुप रहना है। हम औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान भी आया, किसी के कर्म क्षेत्र में भगवान भी इंटरफियर नहीं करता है, कि जो करता है वो पाता है। इसलिए आपको पहले एक शब्द बताया, इस शरीर में जन्म लिया है, इस शरीर के द्वारा, हां भाई जी वो गुस्सा करता है वो करने दो, वो जो कर रहा है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरों को देखकर गलत कर्म कभी नहीं सीखना, जो कर रहा है वो पाता है। अपने को बचाओ, बहुत तेज बरसात आती है, बरसात को रोक सकते हो, नहीं, आप छाता लेके जाते हो। सामने वाला गुस्सा करता है, गलत कर्म करता है, आप अपने को बचाओ, पहले उनको बचाने नहीं जाना, पहले अपने को बचाओ। अपने को बचाने के बाद अगर आपके पास शक्ति है, हमारे पास तो नहीं, भगवान को अपने साथ रखो, भगवान ये आपका बच्चा है, इसको आप समझा सकते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा नहीं है ये। अगर ये अस्त्र लेके जाते हो तो आज के बाद आप अपने संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी शांति से सुखी जीवन बिता सकते हो। लेकिन कुछ करने के बगैर अपने आप नहीं होगा, अपने आप बीमारी ठीक हो, अपने आप परिवार में सुखी हो, शांति हो, बीमारी नहीं हो, ये अपने आप होने वाले काम नहीं है। बीमार दवाई जो भी शरीर को कुछ खिला के बीमारी हुई वो अपने आप नहीं जाएगी, दवाई लेनी पड़ती है। तो समझ में आया, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्मों की गति को जान लो, औरों को बचाने नहीं जाना, औरों को परिवर्तन करने जाना नहीं, स्वयं को परिवर्तन करो। तप का स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा। समझ में आया? कर्मों की गति समझ में आई? हाँ। और जाते समय एक काम करके जाना कि जो हमारे अंदर जो संस्कार बना हुआ है, बच्चे, पति, कोई भी परिवार वाले, बिजनेस में कोई पैसा नहीं देता है, कोई कुछ नहीं करता है, कर्म करते समय देखो, दान देते समय सोच लो, उसके बाद आपके हाथ से गया वो आपकी चीज नहीं है। कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ, मिलेगा नहीं, धक्के खाते रहो और परेशान करो, नहीं। तो उससे देते समय सोच समझ के कर्म करो, और जाते समय एक काम करके जाओ, अगर जीवन में संसार में समृद्धि चाहते हो, शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, गुस्से को यहां छोड़ के जाना, और जो भी लिख सकते हैं एक कागज पर लिखो, शिव बाबा ये गुस्सा आपको दान करके जाते हैं, शिव पर, शिव ने क्या पिया? विष पिया है। शिव पर गुलाब के फूल नहीं चढ़ाते, अक का फूल चढ़ाते हैं, है ना। तो ये विष जो हमको दुख देता है, परिवारों में दुख देता है, गुस्सा करके ना आप शांत सुखी हो, ना परिवार सुखी है। अगर संत परिवार में, गृहस्थ में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो क्रोध को यहां छोड़ के जाना। मंजूर? जो समझते हम क्रोध को छोड़ के जाएंगे वो हाथ उठाओ। ओम शांति। अभी दो मिनट शिव बाबा को याद करते हैं।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो।